अपने आप को کو مروانی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر کچھ ہو تو ضرور منوائیں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں منوانے کے لیے کہ وہ آگے منوا سکے، اس لیے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ منوائی جاتی ہے۔ اب اچھا آرس کے خود مجھے نہ مجھے حق کو منوانا نہیں پڑتا، حق خود بہت اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، باطل کو منوانا پڑتا ہے، اس لیے کہ باطل خود سے اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹاٹوں اندھیروں میں ننگا سا چراغ چل سکتا ہے، لیکن ایک ننگا سا چراغ جہاں چل رہا ہو وہاں گھٹاٹوں اندھیرے نہیں آ سکتے، جہاں شمع جل رہی ہو وہاں گھٹاٹوں اندھیرے بھی نہیں آ سکتے، لیکن جہاں گمبھیر اندھیرے ہو وہاں چراغ جل سکتا ہے، نور وہاں آ سکتا ہے۔ جزیلا نگرانی نور اس حقیقت کا نام ہے، نور وجودی شکل کا نام ہے، حقیقت کا نام ہے جو ہر جگہ آ سکتا ہے، ہر جگہ اس کا آنا خود اندھیرے کا کی موت ہے، روشنی کی آمد خود اندھیروں کا اختتام، جب روشنی آئے گی تو اندھیرے خود بہت بڑھ جائیں گے، جب نور آئے گا تو ظلمتیں خود بہت ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا اذا جاء الحق ظهر الباطل، جب حق آئے گا تو باطل خود بہت ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے باطل اپنا سکہ چلا سکتا ہے، لیکن جب چھوٹے سکے کب چلتے ہیں، جب گھڑا سکہ آ رہا ہو تو چھوٹے سکے چلے گی، جب گھڑا سکہ آ جائے گا تو چھوٹے تو دو ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کی حقیقت، باطل ہمیشہ ڈرتا ہے ہم سے، ایک ایسی حقیقت ہے یہ کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر حق پر ہو تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ اگر حق پر ہو تو اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر باطل کی ہو تو اپنے آپ کو نہیں منوا سکتی۔ یہ عجیب حقیقت ہے کہ باطل میں دم نہیں ہوتا، باطل میں خم نہیں ہوتا، باطل میں جرات نہیں ہوتی، باطل مجبوری کا نام، یہ باطل کیسے وجود میں کیسے آتا ہے، باطل اندھیرے اصل میں وجود میں کیسے آتے ہیں، جب نور عالم بالا پر ہو عالم تجرد میں ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا، نور جب بلندی پر ہو تو سایہ نہیں دیتا، لیکن جب نور مادے سے ٹکراتا ہے، میٹر سے ٹکراتا ہے تو اندھیرا وجود میں آتا ہے، سایہ وجود میں آتا ہے۔ جب یہ نور پہاڑ سے ٹکرایا، پتھر سے ٹکرایا تو سایہ پیدا ہوا، جب بلندی پر نور تھرنا تھا اور وہ میٹر سے ٹکرا نہیں رہا تھا تو سایہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اندھیرا بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ جب وہ ٹکراتا ہے تب مادے سے جب نور ٹکراتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے، اور سایہ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی لیے سایہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، نور کی حقیقت ہوتی ہے، سایہ کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، سایہ تو کہیں نہیں ہے، نور کے طفیل میں سایہ پیدا ہوا، باطل اگر ہے تو حق کے طفیل میں باطل پیدا ہوا، طفیل ہی ہے، اگر حق نہ ہوتا تو باطل وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، باطل حق کے طفیل میں پیدا ہوا۔ میں زیادہ وقت ہی دینا چاہوں گا اس لیے کہ ہمارے وقت کے لیے گنجائش نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور تاخیر بھی ہو گئی ہے، آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کافی تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو کہلانے کے بجائے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حق ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو اٹل حقیقت ہے، جو ناقابل انکار حقیقت ہے، اور حق کا سیدھا رابطہ ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور اس سے وابستگی کا نام حق ہے، اور جو چیز اس سے وابستہ نہ ہو اس کا نام حق نہیں ہے، حق رابطہ ہے ذات ربوبیت سے، और ये सारी हकीकतें उस एक हकीकत की तरफ निशानदेही कर रही है, उस एक हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। वो असली हकीकत है जरूरी
ऐसे भी हो कि जो अपने काम में मजबूर हो,
और थोड़ी सी फुर्सत अगर इंसान को मिलती है, ज्यादा देर की फुर्सत की जरूरत नहीं है कि 10 मिनट मिलने के 15 मिनट आए और इंसान एक सेकेंड के लिए, एक मिनट के लिए जब आपका जहन जितना से गायब होगा तो एक दुनिया में खो जाएगा और खोते खोते जहां निकल जाए कुछ पता नहीं, मकान पड़ेगा फुर्सत मिलेगी तो मकान पर और मकान बनेगा, उस मकान पर और मकान बनेगा, देखते देखते बिल्डिंग बन जाएगी और थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो बिल्डिंग के बगल में और एक बिल्डिंग ठहर जाएगी और देखते देखते एक शहर बन जाएगा। शहर क्या बनेगा कि शहर बनते ही कई शहर और वजूद में आ जाएंगे और देखते देखते एक मुल्क बन जाएगा। ताजमहल भी अगर आप बनाने लगे जहन में तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, ताजमहल बनने में कितनी देर लगती है आप बना के तो देखिए। क्यों आपने तसव्वुर किया क्यों ताजमहल तामीर हो गया, और एक ही फुर्सत मिल जाए तो 10 साल में आप तामीर कर दे और फुर्सत मिल जाए तो 1000 तामीर कर दे और लेकिन थोड़ा सा कोई आके आपको मिलाए बात हो तो मान लो क्या हुआ कि वो सारे ताजमहल जो आपने बनाए थे एक झटके में खत्म हो जाएंगे, किरची किरची हो जाएंगे, टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं पूछूंगा वो ताजमहल गया कहां, वो शहर गया कहां, वो मुल्क गया कहां जिसको आपने अपने जहन में तामीर किया था, आपने जो अपने जहन में जो मुल्क बनाया था वो मुल्क गया कहां, तो आप कहेंगे वो था कहां। मैं पूछूंगा कि वो शहर गया कहां, आप कहेंगे वो शहर था कहां। मैं पूछूंगा अभी आपने जो घर बनाया था वो घर कहां गया, जो बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग कहां गई, तो आप कहेंगे वो थी ही कहां, जो बनाया था तो बनाया था या नहीं बनाया था, तो बनाया था पर उसका मलबा कहां गिरा, उसका कचरा कहां गिरा। शहर जो बना था उसका मलबा किस जहन के किस कोने में जाके गिरा, तो आप कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं था, मेरे जहन की शुआएं जब उसको जब उसको वजूद बख्श रही थी तो वो मौजूद थी, जब मेरे जहन की शुआएं उससे हटती है तो वो खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म होता है जैसे कोई चीज थी ही नहीं, नसीयत मंसिया ढूंढते रह जाओ पता नहीं चलेगा, इसलिए कि वो थी ही कहां, वो मौजूद ही नहीं थी। कुल्लु शैइन हाज़िर इल्ला वज्हुहु, हर शय हलाक शुदा है सिवाय उसके परवरदिगार के, हलाक होने वाली नहीं है हलाक शुदा है। कुल्लु शैइन हाज़िर, हर शय हलाक होने वाली है, ये भी हो सकता है तर्जमा, और ये भी तर्जमा हो सकता है कि कुल्लु शैइन हाज़िर यानी हर शय हाज़िर है हलाक शुदा है, हर शय तबा है मौजूद नहीं है। हर ये मौजूद जो है उस राबिते की बुनियाद पर थे, जब तक वो राबिता मुसलसल मिलता देगा इसका मतलब ये है कि शय वजूद में आ नहीं चुकी है बल्कि मुसलसल आ रही है, हकीकत में तो हलाक शुदा है। अब बिजात हलाकत पर जो वजूद बस कर रहा है ये मुसलसल राबिते की बुनियाद पर है कि वजूद मौजूद है, वरना ये तो अब तक हकीकत मालूम है मौजूद नहीं है, हकीकत में कोई शय मौजूद नहीं है। उस हरकत की वजह से जिसे मुतासल्ला हरकत जौहरी कहते हैं कि जौहर में हरकत पाई जाती है और मुसलसल हरकत की वजह से ये हरकत जौहर है जो मैटर को तंग करके वजूद में ला रहा है, जिसकी बुनियाद से कहा जाता है और साबित किया जाता है कि तख्त यूनिस को चश्मे जदन में, जिस इल्म की बुनियाद पर
तो अंधेरा है, अगर ये उजाला
روشنی آ چکی ہے تو ختم کر دیجیے, بجھا دیجیے چراغ کو. اگر یہ آگ روشن ہو چکا ہے, روشنی یہاں ثابت ہے اور مسلسل آ نہیں رہی ہے تو ختم کر دیجیے. آپ کہیں گے یہاں اصل میں اندھیرا ہے, یہ روشنی جو آ رہی ہے اس تسلسل سے آ رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں روشنی ہے نہیں آ رہی ہے, اصل میں اندھیرا ہے روشنی آ رہی ہے, اصل میں موت ہے, اصل میں عذاب ہے, اصل میں تاریکی ہے, روشنی مسلسل آ رہی ہے, موجود ہے, دیکھنے میں موجود ہے, لیکن حقیقت میں ہلاک شدہ ہے, حقیقت میں ہلاکت ہے, حقیقت میں ہلاکت ہے, وجود مسلسل مل رہا ہے, اس تیزی کے ساتھ, اس تسلسل کے ساتھ وجود مل رہا ہے, یہ دیکھنے والی نگاہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سب موجود ہے, یہ موجود نہیں ہے, ہلاک شدہ ہے. تلوار پڑھو کی بنیاد پر موجود ہے, اور یہ کائنات اصل میں یہ نظام شمسی اصل میں بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات کس کے لیے بنایا؟ اس کے لیے تو عوالم دروازے ہیں, لیکن یہ عالم شمسی, یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ اس کے اطراف ستاروں کو گردش کیوں نکال رہی ہے؟ اس کے لیے چاند بنایا گیا نا, اس کے لیے سورج بنایا گیا. جب یہی نہیں رہے گا تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا, لیکن یہ سب اس کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ ما خلقت السماء مبنیا ولا شمس مضیا ولا قمرا منیرا ولا ارضا مدیا, میں نے زمین کا فرش, آسمان کا شامیانہ, ستاروں کی شمیں, آفتاب اور مہتاب کی منزلیں, گیا اور گیا ریگستان, لہرتا ہوا سمندر, چپٹے لیتا ہوا صحرا, پر کھاتے ہوئے جو تصور کو سر سلف ہی نہیں کیا مگر ان کے سبتے میں جو اس چادر کتا میں موجود ہے. سلوات ہے کے لیے ارشاد ہوا, لولا لما خلقت لولا, اے محمد تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. اگر کائنات خلق ہوئی ہے تو پہلے محمد کے لیے, اگر باقی ہے تو آپ بھی محمد کی وجہ سے. ان کا فائدہ صرف ہدایت ہی سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ ان کا وجود خود کائنات کے عالم کی بقا کا سبب ہے, ورنہ پھر کائنات کی بقا ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو کائنات سب کی تو اس کے لیے مقصد کیا بتایا, مطلب کیا بتایا کہ ہم نے انسان کے لیے بنایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کامل موجود نہ ہو تو پھر کائنات کی بقا کیا مانا رکھتی ہے؟ اللہ نے بھی اس کے لیے بنایا. اتنا خرچ ہو رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہو رہا ہے جو واقعتاً انسان نہیں ہے, انسان کامل نہیں ہے. وہ انسان جو اللہ کے نظر میں انسان کامل ہو, اس انسان کامل کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے. اگر انسان کامل موجود نہ ہو, انسان کامل کبھی آدم کی شکل میں, انسان کامل کبھی نوح کی شکل میں, انسان کامل کبھی خلیل کی شکل میں, انسان کامل کبھی مسیح کی شکل میں, انسان کامل کبھی کلیم کی شکل میں, انسان کامل کبھی محمد عربی کی شکل میں, انسان کامل کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی. انسان اگر موجود نہ ہو تو کائنات کی ذات پڑ جائے. تو وجود کائنات انسان کے لیے ہے. انسان کہاں ہے؟ حقیقت انسان, کامل ترین انسانیت, حقیقت انسانیت جس پیغر میں ہے, اس پیغر کا نام صاحب الاصل و زمان ہے. کہ جن کی حقیقت کی وجہ سے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے, اسی کے فیصلے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا مان پائے. سلوات پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ وجود قائم سے کائنات کا قیام ہے. تو پوری کائنات کا خرچ ایک انسان کے لیے برداشت کرنے کے لیے اللہ تیار. اگر ایک انسان ہو تو پوری کائنات باقی رہے گی. سارے کے سارے انسان جو روئے زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے, ایک انسان رہے تب بھی کائنات رہے گی. اس کی پورے خرچ کے ساتھ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں. انسان کم ہو گئے ہیں, لہٰذا جو ہے کچھ چیزوں کو کم کر دیا جائے, کچھ مندروں کو بجا دیا جائے, کچھ آراموں کو بجا دیا جائے, آسمان کے ستاروں کو غائب کر دیا جائے, چاند کی روشنی کو کم کر دیا جائے, سورج کی روشنی کو کم کر دیا جائے. جس وقت حضرت آدم لے کے تھے تبھی پورا خط اتنا ہی برداشت کیا جا رہا تھا, آج اتنا خط برداشت کیا جا رہا ہے. مسکرانے کی بات نہیں ہے. یہ کائنات کا بھی اپنا خرچ ہے, کوئی فضول نہیں ہے. یعنی آپ کے گھر پر اگر نل کا بل نہیں آتا ہے, پانی کا بل نہیں آتا ہے, لائٹ کا خرچ کا بل نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خرچ نہیں ہو رہا ہے. خرچ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے. آپ کے گھر کے اوپر جو ہے اس کا بل نہیں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خرچ نہیں ہے. اور خرچ کو آپ کروڑوں میں ملین میں جتنے ہیں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں. سورج کی روشنی کا خرچ ایک دن کا خرچ کائنات کا, سمندر کی روانی, ہوائیں, فضائیں, ستارے, چاند, سورج, یہ سب, اور اس سب کی بہا ایک انسان کے لیے. وہ انسان کتنا محترم ہے, وہ انسان کتنا عزیز ہے, وہ انسان کتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے اتنی قیمت برداشت کی جا رہی ہے, اتنا خرچ برداشت کیا جا رہا ہے, اتنی زندگیاں, اتنی سانسیں, اتنے حیوان, اتنے جانور. طیور, وحوش, سمندر کے جانور, ہواؤں کے, فضاؤں کے, ان سب کا خرچ ایک انسان کے لیے. وہ انسان کتنا قیمتی ہے, وہ ذات کتنی قیمتی ہے. وزیر اعظم मालूम यह हुआ कि साहिबुल असर उस जात का नाम है जिसके लिए कायनात काफी है और जिसके तुगैल में हम और आप सांसें ले रहे हैं, कि जिसके तुगैल में हम पानी पी रहे हैं, जिसके तुगैल में हम खाना खा रहे हैं, जिसके तुगैल में हम सांस ले रहे हैं, ये सारी फजाएं उनके लिए है और हम अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं उनके तुगैल उनके सदस्य। तो उस इमाम का वजूद कितना कीमती है, वो इमाम अल्लाह की नजर में कितना कीमती है, उसकी वफा कितनी कीमती है, उसकी वफा कायनात की वफा का सबब है। तो इमाम असल का जाहिर होना, इमाम असल असल का गायब नहीं है, हम गायब हैं, वो मौजूद है, वो जाहिर है, मगर पर्दा हमारी निगाहों में पड़ा हुआ है, उनके वजूद में पड़ता नहीं पड़ा, हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। कि हमारी आंखों में से पर्दा कब हटेगा और हम कब उनका वजूद देख सकेंगे, जब हम उन्हें पहचान सकेंगे, जब हम उनकी मार्फत हासिल कर सकेंगे, जब हम अपनी आंखों से उनके उनके वजूद को दीदार कर सकेंगे, वो हमसे लेते हैं, वो हमसे उन पर पाबंदी नहीं है, हम पर पाबंदी है। इसीलिए कहा गया कि जो शख्स ये इत्तेला करे कि मैं साहिब असर से मिल के आया हूं, तो उसकी तस्दीक करो, रिवायत कह रही है। मासूम कहते हैं कि उस शख्स की तस्दीक करो जो ये कहता है। इमाम मिलते हैं मगर हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम इमाम से मिल के आए। अगर ऐसे हो जाए कि हमने पहचान लिया तो फिर जरूर हो गया, इसका मतलब यह है कि उस शख्स के लिए जरूर हो गया, उस शख्स के लिए जो है इमाम का जरूर हो गया है कि वो इमाम से मुलाकात करके आया, पर्दे हट चुके हैं गोया और वो इमाम को पहचान चुका है। अज़ीज़ाने ग्रामी, लोग मिलते थे बेसब से पहले हुज़ूर सरवरे कायनात से, लेकिन कोई ये नहीं पहचानता था जहूर और बेसब से पहले कि यही मोहम्मद अरबी है, यही मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सब जात मुस्तफ़ा से मिलते जरूर थे लेकिन किसी को शिनाख्त नहीं थी मुस्तफ़ा, किसी को पहचान नहीं थी मुस्तफ़ा की, कोई दर्द नहीं कर सकता था मुस्तफ़ा को। पहचानना मोहम्मद अरबी का, दर्द करना सरवर कायनात का, ये बहुत मुश्किल मरहला है कि कौन पहचानेगा जब तक कि वो खुद न इजहार करे कि मैं मोहम्मद हूँ, कोई नहीं पहचान पाएगा कि यही मोहम्मद है। ये सबसे पहले किसी ने नहीं पहचाना, न चचाओं ने पहचाना, न रिश्तेदारों ने पहचाना, न मक्के वालों ने पहचाना, न मदीने वालों ने पहचाना, किसी ने भी नहीं पहचाना, मौजूद थे लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। मोहम्मद को देखते थे, किसी ने रसूल को नहीं देखा, रसूल को किसी ने नहीं देखा। रिसालत से पहले कौन रसूल को देख सकता है, ऐलान रिसालत से पहले कौन रसूल को देख सकता है। जब ऐलान हुआ तो सबने कहा कि हमने रसूल से मुलाकात की थी, हमने रसूल को देखा था, हम रसूल की बस में बैठ चुके, हम रसूल से मिल चुके। बेसब से पहले रसूल थे लेकिन ऐलान रिसालत नहीं हुआ था। मालूम यह हुआ कि इमाम असर की गैबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या है, तो पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी निगाहों में वो ताकत पैदा करें, दर्द की वो सलाहियत पैदा करें कि जो हम पहचान सके, जब रूहे अनवर से हिजाब उठेगा, जब जहूर होगा तो हम पहचान सकेंगे या नहीं पहचान सकेंगे, ये मसला। आप तो कोई भी नहीं पहचानेगा लेकिन क्या उस वक्त भी पहचान सकेंगे जब जरूर हो जाएगा, कि उस वक्त मारिफत हो जाएगी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत फरमाया था, तो कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने रिसालत करना, कितने लोगों ने रसूल को दर किया, कितने लोगों ने रसूल का कलमा पढ़ा। ऐलान होते ही, जहूर होते ही दर की सलाहियत खो चुके थे, रसूल तो नहीं देख रहे थे, अब भी लोग मोहम्मद देख रहे थे, रसूल किसी को नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि कितने लोगों को फतेह मक्का के वक्त भी ये समझ में नहीं आया कि ये रसूल है, उनकी निगाहों पर उस वक्त तक भी निगाह पड़ा रहा जबकि मोहम्मद फतेह मक्का करते हुए मदीने से लश्कर लेके मक्के की सरजमीन पर दोबारा वापस लौट के आ रहे हैं। उस वक्त तक कितने लोगों की निगाहों पर हिजाब पड़ा, लोग कह रहे थे हम मोहम्मद देख रहे हैं रसूल नहीं नजर आ रहा। इतने लोगों को उस वक्त रसूल नजर नहीं आ रहा था, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप जिसके इंतजार में बैठे हुए हैं उसको आप पहचान भी लेंगे? जब वो जाहिर होंगे तो आप पहचान भी लेंगे कि यही मोहम्मद, यही वारिस मोहम्मद है, यही रहमतुल्लाह अलैहि का वतन है, यही है मोहम्मद अली का वतन। कैसे पहचानेंगे आप, कैसे दर्ज कर सकेंगे आप? ये आसान नहीं, ये इत्तेहा है आपका कि हम पहचान लेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? वो क्या सबूत है आपके पास जिन सबूतों की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि कल हम इमाम को पहचान लेंगे? इसलिए कि ये तुम्हारे पास के सबूत है, आपके पास जो मुलाकात है वो मुलाकात क्या है कि जिसकी वजह से आप पहचान लेंगे, जिसकी वजह से आप इधर कर देंगे कि यही है जिसके हम इंतजार में थे। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि अशखास से हक को हक पहचानो, हक के जरिए से अशखास को पहचानो। पहले हक को दरिया, अगर हक को पहचानने की सलाहियत नहीं है तो साहिब हक को भी पहचाना नहीं जा सकता है। जब हक को दर करने की सलाहियत नहीं है तो साहिब हक कैसे पहचाना जाएगा? यही वजह है क्योंकि दर के आपकी सलाहियत मकबूल हो चुकी है, जो तसव्वुरात लोगों के जहनों में बैठे हुए उन्हीं तसव्वुरात को लेकर कितने लोगों ने मजीद मौत का दावा किया। जब लोग ये बावर करने लगे कि कोई मजीद मौत से मिल सकता है, मजीद साहिब से मिल सकता है, तब मोहम्मद अली ने भाई फिरते के पानी ने अपने आप को बाप कहा है, मैं बाप हूं, मैंने बाप होने का दावा किया, उसके बाद में खुद मेहंदी मऊद होने का दावा कर दिया। जब लोग मानने लगे तो कहा मैं ही मेहंदी मऊद हूं। गुलाम अहमद कादियानी ने क्या कहा? गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मसीह है, मसीह मऊद मैं हूं, मेहंदी मऊद मैं हूं। गुलाम अहमद कादियानी ने मेहंदी मऊद का दावा किया। मोहम्मद चौधरी ने मेहंदी चौधरी ने मेहंदी मऊद का दावा किया। अब कितने मेहंदी मऊद का दावा कर चुके और कितने लोग कर सकते हैं? तो कई लोग इस बात का इंतजार करेंगे, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाकई मेहंदी आप उस समय जब इमाम खुद आएंगे और कहेंगे मैं हूं मेहंदी मऊद, तो कितने लोग इकरार करेंगे? इसके लिए कहा गया कि आप गैबत इमाम में आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इमाम की मालूमत हासिल करें। वगन मात वगन जाद इमाम अवमान ही मातम ही तसल चाहिलिया, कि जो इमाम जमाना को पहचाने बगैर मर रहा है उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। इसका मतलब ये है कि जाहिलियत की मौत उस दौर को कहते हैं जब मोहम्मद अरबी मबूस नहीं हुए थे, जिस दौर में जिस जमाने में लोगों ने जलवे मोहम्मद नहीं देखा था उस दौर को जाहिलियत का दौर कहते थे। और जो भी दौर अपने मोहम्मद को तर्क करे बगैर वो दौर खत्म हो जाए उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाए। जो जमाना अपने मोहम्मद को तर्क न कर सके वो जमाना जाहिलियत का जमाना है, और जो जमाना अपने मोहम्मद को तर्क कर ले वो जमाना जाहिलियत का जमाना नहीं है, जिम्मेदारी ये है कि हम इमाम ज़माना की मारिफत हासिल करें, हकीकत में उनकी मारिफत हासिल करें कि वो कैसे, वो इमाम कैसे हैं, मुझे समझने की कोशिश करें, मुझे दर्द करने की कोशिश करें। जब वो मुलाकात हमारे पास आ जाएंगे समझने के, तब हम आसानी से समझ लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो सेमिनार हुआ था उसमें मैंने अर्ज किया था कि जिन लोगों के जहनों में इमाम ज़माना का जो तसव्वुर बैठा हुआ है, वो तसव्वुर ही कुछ ऐसा है कि जब तक वो तसव्वुर पूरा नहीं होगा तो पहचानेंगे। लोग इस तरह से अपने जहन में तसव्वुर बनाए हुए हैं कि उस तसव्वुर से के बगैर जब इमाम को देखेंगे तो कहेंगे कि हमारा जो तसव्वुर था उस पर ये पूरे नहीं उतर रहे हैं, यहाँ तक ये मौके महदी मौजूद नहीं है। हमारे जहन में जिस इमाम का तसव्वुर है वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो हम इन्हें से कहेंगे ये तो बहुत नर्म दिल है, तो कहेंगे ये तो नहीं हो सकते, इसलिए कि जिस इमाम का तारुफ हमें कराया गया था वो इमाम तो निहायत गुस्से गुस्से थे, वो निहायत गुस्से वाले थे, उनके देवर हमेशा डरे हुए होते थे, उनके आदमी ने हमेशा उल्टी हुई होती थी, उनके हाथ में हमेशा तलवार होती थी। ये तो हम देख रहे हैं कि ये सब तो मुसलसल से हट नहीं रहा है, लिहाजा ये कैसे जो है इमाम हो सकता है। ये कैसे इमाम हो सकता है? शेरों का शेर जो मैदान में आएगा, आकर अली के तेज का जौहर दिखाएगा, बेटा अली का कर गया कब्जा फराह पर, होता जो आएगा तो मुसल्ला दिखाएगा। मालूम क्या हुआ कि हमारा तसव्वुर इमाम के बारे में क्या है? जब वो तसव्वुर नहीं पूरा हो, क्योंकि हमने गैबत के दौर में मारिफत नहीं हासिल की, साचा नहीं है हमारे पास, वो मिलाकात नहीं है हमारे पास, हमारे जहन में जिस इमाम का तसव्वुर है नऊज़ बिल्लाह, वो तसव्वुर किसी हलाक के फर्जंद का तो हो सकता है लेकिन रहमतुल आलमीन के बेटे का तसव्वुर नहीं हो सकता है। वो तसव्वुर चंगेज खान के बेटे का तो हो सकता है लेकिन वो तसव्वुर रहमतुल आलमीन के फर्जंद का नहीं हो सकता है। वो तसव्वुर आमिरुल मोमिनीन हसन मुस्तफा हुसैन शहीद से करवाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का तसव्वुर एक ऐसा तसव्वुर है जो तसव्वुर किसी भी इमाम के चेहरे में जो रंग नहीं मिला वो रंग हमने इमाम के हमने इमाम की तस्वीर से मंसूब कर दिया। वो तस्वीर जो हसन मुस्तफा के आईने में नजर आई, वो तस्वीर जो था हुसैन शहीद करबला के आईने में नजर आई, वो तस्वीर जो था सैयद आबिदीन के आईने में नजर आई, ऐसी तस्वीर हमने खुद अपने जहन में खुद से तामीर कर दी या तामीर करा दी गई या बना दी गई, अपना रंग उस तस्वीर में हमने ऐसे भर दिया कि अब जो तस्वीर बन के जहन में तामीर हुई तो अब उस जहन में जो तस्वीर बनी है वो तस्वीर का हसन मुस्तफा से बैठ खाती है, ना हुसैन शहीद करबला से जचती है, ना सैयद आबिदीन से मिलती है, ना मोहम्मद बाकर से मिलती है, ना जावद सादत से मिलती है, ना मुझे कादर से मिलती है, जबकि हम जिस इमाम का तसव्वुर कर रहे हैं वो वारिस मोहम्मद अरबी है, वो वारिस इल्म हसनी है, वो वारिस शजाअत हुसैनी है, वो वारिस इबादत सज्जादी है। हमको इन तसव्वुरात से हटकर एक अलहदा तसव्वुर कायम करना, इमामत को समझे बगैर इमाम को समझने की कोशिश करना, हम मुजाहिदीन को समझे बगैर इमाम को समझना, और हम हाकिमान इस्लामी को समझे बगैर तसव्वुर इस्लामी पैदा नहीं हुआ है तो हम कैसे किसी मुसलमान को समझ सकते हैं? कभी किसी मोमिन, जब मोमिन ही का तसव्वुर हमारे जहन में नहीं है तो अमीरुल मोमिनीन का तसव्वुर और वारिस अमीरुल मोमिनीन का तसव्वुर कैसे आ सकता है? इस ख्वाब मुगलत में रहना कि हम पहचान लें इमाम को, नाम जान लेने से पहचानत नहीं होगी। हम नाम जानते हैं, शिनासनामा जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो कब पैदा हुए, हम ये जानते हैं कि वो किसके बेटे हैं, वो किसके फर्जंद है, किस सन में विलादत हुई है, किस जगह पर विलादत हुई है। ये तारुफ तो एक शख्स का तारुफ है, शख्स और होता है, शख्सियत और होती है, शख्स का तारुफ करना है, नाम वाले कई आ सकते हैं, उस मकाम पे पैदा होने वाले कई आ सकते हैं, उस नस्ल के लोग कई हो सकते हैं। अब ऐसे सुंदर क्या कहते हैं कि आएंगे इमाम, जरूर आएंगे, यहाँ तक कि वो आने वाला हसन हसन अस्करी के औलाद से होगा, आने वाला अली मुर्तजा का पसंद होगा, ये नहीं मालूम कि वो कब पैदा होगा। ये कहते हैं तस्वुर है जरूर, हत्ता के नाम से भी वाकिफ है, नाम से वाकिफ है कि वो आने वाला नफ्स का नाम मेहदी होगा। तो जब सभी मेहदी को जानते हैं तो क्या फर्क है, फिर शिनाख किसे कहते हैं, सारे लोग नाम जानते हैं कि आने वाला मेहदी, तो पूछ लेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, जब तो वो बता देगा कि मैं मेरा नाम मेहदी है, तो ईमान ले आएंगे। इससे पहले क्यों मजहबी फिरने वाले ईमान ले आए, अभी तक मजहबी फिरना मौजूद है, मजहबी पठान इस वक्त हैदराबाद में, गुजरात में, मुख्तलिफ जगह पर गए, मुंबई में भी कुछ होंगे, मजहू मेहदी जौनपुरी को मानने वाले और गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले, उनकी भी तादाद बहुत हिंदुस्तान में कादियानी करते थे। ये लोग मेहदी के इंतजार में बैठे थे ना, उनके गाँव में मेहदी हूँ तो ये मान लिए, अब जो भी कहेगा मैं मेहदी हूँ मान लेंगे, मिला क्या है। इंशाल्लाह फिर कोशिश भी रहेगी कि मिला था और समझने की कोशिश करें कि वो मिला क्या है और वो आने वाला रहेगा क्या, समझे क्या करेगा, इसके जरिए से हम पहचाने वाला मत क्या होंगी, जिसके जरिए से हम इमाम मेहदी को पहचान सकते हैं। जवाब बड़े मोहम्मद लेकिन किसने माना कि ये हुसैन, सब देख रहे थे कि ये हुसैन, लेकिन किसने तस्दीक किया कि ये हुसैन, किसने दर्द किया कि ये हुसैन, किसने पहचाना कि ये हुसैन, सब जानते थे कि ये अली का बेटा है, ये ताबूत नहीं है, ये मारिफत नहीं है, जैसे सब जानते हैं कि ये फातिमा का बेटा है, सब जानते हैं कि ये रसूल का नवासा है, सब जानते हैं, जानने के बावजूद भी माना क्यों नहीं। मारिफत कौन सी मारिफत थी, कैसी मारिफत थी, वो भी मारिफत है, लेकिन दो मारिफतें हैं, एक मारिफत मजबूर मारिफत है, एक मारिफत वो है जो बेतस्तोबा मारिफत है, जिस मारिफत की कोई हकीकत नहीं है, एक हमारे आस को भी मारिफत है और एक गुरु को भी मारिफत है, गुरु को मारिफत हुई, इमाम हुसैन थी तो कैसे पलट के आए, और हमारे आस को भी मारिफत थी, बहुत अच्छी तरह से हमारे आस पहचानता था, क्यों नहीं पहचानेगा, हमारे आस किसका बेटा है, साबित ने भी वकास का बेटा है, साबित ने भी वकास उन जलील उल कद्र लोगों में से रहा किसी दौर में, जो चेहरे अली तालिब ने रसूल अकरम के साथ रहने वालों में साबित ने भी वकास है, शुरा की शिश नुकरी कमेटी के साबित ने भी वकास है, तो साबित ने भी वकास का बेटा नहीं करेगा तो और कौन करेगा, शुरू पहचानेगा, पूरी पहचानेगा, कौन पहचानेगा, पूरे लश्कर में कौन था ऐसा सीनियर प्लस ये जो इमाम हुसैन के खानदान से वाकिफ हो, इमाम हुसैन की शख्सियत से वाकिफ हो, इमाम हुसैन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरा, हमारे हाथ से वेतन कौन जानता है, यही तो शहजादी पूछ रही थी, हमारे साथ तेरी मारिफत नहीं है, तो नहीं पहचानता, तो नहीं जानता कि तू जिसको शहीद कर रहा है वो फातिमा का बेटा है, तो क्या शहजादी क्या बताना चाह रही थी, क्या शहजादी तारुफ करवाना चाह रही थी, हमारे आप जान लेंगे ये फातिमा का बेटा है, ये जान लेंगे अली का, अगर अगर शहजादी को तारुफ करवाना होता या अपने भाई की जान बचाना होता या हयात की नौजुबिता भी मांगनी होती तो हमारे आज से मांगने की क्या जरूरत थी और हमारे आज से मुतवजे करने की क्या जरूरत थी, खंजर तो शिमर के हाथ में था, शहजादी को मुखातब तो शिमर को करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि शिमर तेरा खंजर जिस गले पर है वो गला मोहम्मद मुस्तफा ने इस गले का फसा लिया है, अली मुर्तजा ने इस गले का फसा लिया है, शहजादी को तो मुखातब शिमर को करना चाहिए था, लेकिन हमारे आज को मुखातब करके ये क्यों कहा, एक ना आज के फातिमा का बेटा لیکن امامت کو نہیں پہچانتا. اس لباس کے اندر جو روحانیت ہے, اس جسم کے اندر جو ایمان ہے اور اس کے اندر جو لو ہے امامت ہے, تو کس کا گلا کاٹ رہا ہے؟ یہ فرزند رسول ہے, یہ علی اور فاطمہ کا وہ بیٹا ہے جو امام وقت ہے, امام اثر ہے اور زمانے کا امام ہے, جو امام زمانہ کی گلے کا خنجر رکھ رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ کیسا عجیب منظر تھا, وہ کتنا عجیب دن تھا جس کی سنا گھر چلا آیا اور سنا ہوتے ہی گھر سے دریافت کر دیا کہ امام کون ہے, وقت کا امام کون ہے, واجب الاطاعت کون ہے, یزید واجب الاطاعت ہے یا حسین واجب الاطاعت ہے, ہمارے آس واجب الاطاعت ہے میرے لیے یا حسین واجب الاطاعت ہے, امام وقت قابل اطاعت ہوتا ہے یزیدان وقت قابل اطاعت ہوتے ہیں. اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ سجدے جو ہو رہے ہیں وہ طاغوت کے سائے میں ہو رہے ہیں یا امام وقت کی اتباع میں ہو رہے ہیں, اسے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اور جب یہ قرب میں کوشش کر لیا تو قرب دوڑتا ہوا آیا, قدموں میں نشاور ہو گیا. یہ تھا معرفت کا جذبہ دلانے کے لیے. معرفت جب حاصل ہوتی ہے تب اس طرح چھوٹ جاتا ہے درجے میں امام میں, پھر وہ خم ہو جاتے ہیں,
سلام علیکم.